समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, नमस्कार। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM विद शगुन चोपड़ा एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट आकर्षिता। Well, a good day to you all listeners. Well, we will begin our program with a selection of news, our discussion segment, Dateline India, and we have reports and capsules and attributes which are there at the end of the program, and it's a very interesting section there, and we have lined so much interesting stuff for you overall for over these next 30 minutes. First, we are beginning with the news headlines.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के नेताओं की बैठक में शामिल हुए।
प्राइम मिनिस्टर मोदी आल्सो होल्ड्स बायलैटरल मीटिंग विद साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा।
विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिहा के साथ बातचीत की और यूक्रेन रूस संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और स्थायी शांति के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की।
India and Israel to implement proposed free trade agreement in two phases to ensure early benefits, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal.
मौसम विभाग द्वारा पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत में कोहरे का अनुमान, दक्षिणी राज्यों में मूसलाधार बारिश की आशंका।
And in badminton, India's Lakshya Sen clinches Australian Open 2025 men's singles title in Sydney. And this is our segment, Dateline India. And today, we will talk about Conference of Parties 30, COP 30 of the United Nations Climate Change Conference. We have stories about our planet, our people and our shared future. So, we are taking you to Brazil, home to the Amazon rainforest, where world leaders gathered for a major event, Conference of Parties 30, the United Nations Climate Change Conference. Imagine a huge meeting with almost every country on earth sitting in one giant room discussing how to save the planet. Well, that is COP, the Conference of Parties, COP 30. This year was COP 30. This means this is the 30th time the world has come together to talk about climate change, global warming, and how to protect the future.
आज हम जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और बढ़ते तापमान से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में पूरे विश्व का एक साथ आना और भी जरूरी हो जाता है
जी।
बिन मौसम बारिश, वनों की कटाई और निर्धूम अग्निकुंड बनती धरती इसके प्रमुख कारण हैं। जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ रहा है, वैसे ही बहुत सारी वनस्पतियां और जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे समय में कॉप 30 का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में तेजी लाना, पेरिस समझौते के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का आकलन करना और भविष्य की जलवायु कार्रवाई के लिए ठोस योजनाएं बनाना है। अमेजॉन क्षेत्र में आयोजित होने के कारण इस सम्मेलन में वनों की कटाई को रोकने, प्रकृति आधारित समाधानों और स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।
एंड एट द क्लोजिंग ऑफ कॉप 30, इंडिया डिलीवर्ड अ स्ट्रांग एंड क्लियर मैसेज एंड ऑनेस्टली इट एकोड द फीलिंग्स ऑफ मेनी डेवलपिंग कंट्रीज। वेल, दिस इज इंडियाज पर्सपेक्टिव। Those who have contributed least to climate change must not be forced to carry the biggest burden of fixing it. Let's break it down for you. Countries like India, many African nations and small island countries in the Pacific are suffering from floods, heat waves and rising seas. But historically, they did not cause most of the pollution That warmed the planet, Akarshita.
जी हाँ, भारत ने भी ये स्पष्ट कहा है कि जलवायु परिवर्तन का बोझ उन देशों पर नहीं डाला जाना चाहिए जो इसके लिए सबसे कम रूप से जिम्मेदार हैं। ये विकसित देशों की लंबे समय से चली आ रही जिम्मेदारी है कि ये विकासशील देशों को पर्याप्त जलवायु वित्त उपलब्ध कराएं। भारत ने विज्ञान आधारित, न्यायपूर्ण और समानता पर आधारित जलवायु कार्रवाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है।
सिमिलरली, richer countries who developed early using coal and oil, they have a responsibility, well, to help other nations shift to cleaner energy, protect their people, and then build climate-safe systems. India welcomed the commitment from developed nations to provide this financial support, because without money, well, financial support, good ideas remain just ideas and do not turn into something substantial or transform into something significant or real.
और शगुन, जैसे जैसे दुनिया स्वच्छ और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, किसी भी कर्मचारी और किसी भी समुदाय को पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें, जैसे कॉप की ही बात करें, कॉप 30 की, तो जो 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 निर्णय लिए गए हैं वो आसान नहीं होंगे इम्प्लीमेंट करना, जैसे कि कोयला संयंत्रों के कर्मचारियों को अगर अचानक उन्हें बेरोजगार कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कोयले से को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सतत विकास के लक्ष्यों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम थोड़ा जो इलेक्ट्रिक जैसे वाहनों का उपयोग है और भी कई
स्विच टू क्लीन एनर्जी,
हाँ क्लीन एनर्जी के लिए, तो उससे हमें जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनसे कहीं ना कहीं से निपटना चाहिए। तो ऐसे है कि वहां की जो इम्प्लॉयज हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरा है कि किसानों को नई तकनीकों को अपनाने के लिए समर्थन मिलना चाहिए, क्योंकि जो उनकी पुरानी तकनीकें हैं, जैसे वो ग्राउंड वाटर जिस तरीके से हार्वेस्ट करते हैं ट्यूबवेल्स के माध्यम से, उन सब तकनीकों में भी जो बदलाव आएगा, जैसे वो पेट्रोल का यूज करते थे अब वो इलेक्ट्रिक जो है बिजली का उपकरणों का प्रयोग करेंगे, और जैसे स्थानीय समुदाय को नए हरित उद्योगों से लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि तभी हम इसको अपना सकते हैं। जब हम जब जो एक कॉमन मैन है, जो एक आम जनता है, उसको जब हम प्रॉफिट दे सकें, तभी हम सतत विकास के लक्ष्यों को अपना सकते हैं।
Yes, we should emphasize on skill development of the labor and the workforce, right? And India praised this mechanism because it supports both climate action and social justice at global and national levels. What it means is we can protect the planet and protect people at the same time.
जी हाँ, और भारत ने ब्राजील के नेतृत्व का मजबूत समर्थन भी किया है और ग्लोबल साउथ अर्थात विकासशील देशों के लिए वैश्विक समर्थन की वकालत की है, क्योंकि जैसा कि अभी शगुन ने बताया कि जो विकासशील देश हैं वो उतना पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं जितना कि उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। जो विकसित देश है वो जितना पोल्यूशन करते हैं उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है।
डेवलप्ड अर्ली एंड देन,
तो कहीं ना कहीं उनको भी हमें फाइनेंशियल सपोर्ट देने की जरूरत है, इनफैक्ट ज्यादा देने की जरूरत है। और भारत ने जलवायु वित्त तक पहुंचने के तंत्र को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय मंच स्थापित करने की योजनाओं की भी घोषणा की है।
एंड आकर्षिता, इंडिया ऑल्सो सेड दैट ऑल कंट्रीज मस्ट वर्क टू मेक श्योर क्लाइमेट एम्बिशन, द प्लान्स टू कट एमिशंस एंड प्रोटेक्ट द प्लैनेट इज नंबर वन, इंक्लूसिव वेयर एवरीवन गेट्स अ वॉइस एंड जस्ट when no one is treated unfairly. Third, number three, equitable, where responsibilities match capabilities. A climate-friendly future, according to India, must leave no one behind. As we were also discussing, workforce, labor, skill development practices, they should be adopted so that the transition is not difficult for them.
और शगुन, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कॉप 30 में भारत ने उठाया, वो था कि कमजोर आबादी की सुरक्षा, खासकर ग्लोबल साउथ में विकासशील देशों का समूह जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के ज्यादातर देश शामिल हैं, और इसमें जो जलवायु प्रभावों का सामना करते हैं, जैसे कि खराब मौसम, जब बारिश नहीं होनी है तब बारिश हो जा रही है और जब गर्मी पड़नी है तो जो है गर्मी नहीं आ रही है, तो इससे फसलों को बहुत नुकसान पहुंचता है, और समुद्र का जो बढ़ता जो है लेवल है उससे क्या होता है कि बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, जो समुद्री किनारे जो इलाके रहते हैं, जिससे मछुआरों को बहुत ज्यादा जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और हीट वेव्स, जो कि हमने कई बार हीट वेव्स के बारे में डिस्कशंस भी किए कि किस तरीके से ये हमें हमारे हेल्थ को कितना इम्पैक्ट कर रही हैं, तो अगर कहा जाए तो प्राकृतिक संसाधन जो है वो भी दुर्लभ होते जा रहे हैं, तो एक जो विकासशील देश है इनको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो अगर हम पूरे विश्व के लोग एक साथ आके ये निश्चय करें कि जो विकासशील देश हैं उन्हें भी वो अपना समर्थन दे तो शायद हम इस समस्या से निपट सकते हैं.
And that's what India reminded the world, Akarshita. If we don't protect the vulnerable now, tomorrow it will be too late. And at COP30, this message resonated deeply across nations. And now, let's talk about what COP30 means for you and for me. Here's how. Cleaner air and cleaner energy mean better health. More climate finance means safer cities and stronger infrastructure. Fair and just policies mean people don't lose their jobs in the transition. We were also focusing on that. Adaptation funds can protect farmers, fishermen and vulnerable families. Young people will see new opportunities in green technology.
तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि COP30 जलवायु सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने दुनिया को जलवायु संकट से लड़ने के लिए एकजुट रखने में मदद की. तो ये इस खूबसूरत धरती पर रहने वाले हम सभी का दायित्व है, हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम उसको वैसा ही रखें, क्योंकि जैसे जैसे अमेजोन का संगीत हमारे पीछे फीका पड़ता जा रहा है, COP30 दुनिया के सामने एक सच्चाई छोड़ रहा है. और जलवायु कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए, जलवायु न्याय वास्तविकता होनी चाहिए और जलवायु महत्वाकांक्षा सभी की होनी चाहिए.
एंड ओवरऑल इंडियाज वॉइस एट COP30 स्टूड फॉर फेयरनेस, इंक्लूजन एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिमाइंडिंग द वर्ल्ड दैट फ्यूचर डिपेंड्स ऑन कोऑपरेशन, नॉट ऑन कॉम्पिटिशन. दिस प्लैनेट इज नॉट जस्ट आर होम, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
वी आर टेकिंग आवर लिसनर्स फर्स्ट टू इफी गोवा. द 56th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया स्टेप्ड इनटू डे 4, कीपिंग अप द स्पिरिट्स हाई फॉर सिने लवर्स. आकाशवाणी ब्रिंग्स एन एक्सक्लूसिव कवरेज.
The magic of the magnum opus Sholay continues to entice cinephiles even today. IFFI 2025 is paying tribute to Jay and Veeru's friendship by displaying the very motorbike that was used in the film. Sholay fans are patiently waiting for their turn to get a selfie or a picture clicked with the iconic bike, which is carefully kept in a glass cabin. When icons like Amitabh Bachchan and Dharmendra use a bike, then it no longer remains a motorbike. It becomes a much sought after treasure. A fan speaks to us. The iconic bike, a 1942 BSA WM20 motorcycle, has become an unforgettable part of Indian cinema's history. The bike bearing registration number MYB3047, was originally built as a specially designed British military motorcycle. The bike's appearance in Sholay has made it a cultural phenomenon, symbolizing friendship, adventure, and the golden era of Bollywood. The scene where Jay rides the bike with Veeru sitting on his shoulder, playing the mouth organ, is still engraved in the memories of cinema enthusiasts. IFFI 2025 continues to witness a sea of cinema lovers pouring in every day. And even though you're getting the latest from us, for a selfie with the bike, you ought to come here. With Adarsh and Nikhil, this is Saira Mushtaba for Parikrama, IFFI, Goa.
Let's now head to Leh. The Leh District Administration has initiated a 15-day outreach campaign, which is Administration at Your Doorstep, to bridge the gap between the public and administration. This program aims to resolve local grievances, ensure saturation of government schemes, and strengthen the link between the public and administration. We have a report.
Launch an outreach campaign called Mimamsi Jabstos to bridge the gap between the public and the administration in the remote and scattered areas of Ladakh. This initiative aims to resolve local grievances, ensure saturation of government schemes, and to strengthen the link between the public and the administration. Various government departments are participating in the camps to provide essential services like Golden Card, Aadhaar Card, ABA Card, Resident Certificate, Kisan Credit Card, Revenue Record, and many other important documents documents to the public and to address local grievances and provide solutions to pending issues at their doorsteps. The nodal officer and the assistant director of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department Leh, Ruth Mary, expressed satisfaction with the outreach program, stating that it has been highly effective in bringing government services closer to the people.
UT administration or district administration ki taraf se ek outreach program start kiya hai, jisme 15 dinon mein sare villages ko cover karna hai Leh district mein. Isme sare district officers har ek village mein jaake logon ke grievances ko sunenge aur koshish yahi hai ki on spot jitne bhi grievances ho unko redress karke hum aaye. Jo grievances hum on spot resolve nahi kar sakte hain unko hum note down karke laate hain aur uske baad isko higher authorities ko hum apprise karke unko batate hain ki kis gaon mein kya issues hai. To mujhe lagta hai ki ye program bahut hi ek successful program bana hai kyunki bahut sare logon ke grievances on spot resolve bhi hue hain aur jo bade issues the unko higher authorities ko apprise kiya gaya hai.
The outreach campaign will make government service more accessible to the public, especially in remote areas. The administration will be more responsive to the public needs, addressing grievances and providing solutions, and the campaign will promote transparency in governance, ensuring that the government services are delivered fairly and efficiently. For Parikrama, this is Chetan Trashi from Leh Ladakh.
सिक्किम में मत्स्य विभाग ने हाल ही में सिलीगुड़ी में पहली बार दो दिवसीय सिक्किम मछली महोत्सव 2025 का आयोजन करके एक नया अध्याय शुरू किया है. एक रिपोर्ट.
Festival began with a formal program at a city hotel, followed by the inauguration of exhibition stalls at Vega Circle. Minister Puran Gurung graced the event as chief guest, with senior officials and representatives from various departments in attendance. Secretary Roshni highlighted that the hosting the festival outside Sikkim for the very first time reflects the state government's commitment to strengthening cold water fisheries in line with the Chief Minister Prem Singh Tamang's vision. The event featured the launch of illustrations of 21 indigenous fish species of Sikkim, the fish directory and the fish calendar 2025. Department of Fisheries distributed fish feed, aquariums, water testing kits and beneficiary tokens under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana and MMMUI. Awards for excellence and aquaculture were presented to outstanding farmers and cooperatives from across districts. The minister emphasized that organizing the festival in Siliguri would boost market access, promote interstate trade and create livelihood opportunities, particularly encouraging youth to explore career prospects in fisheries. The dignitaries later inaugurated the exhibition stalls at Vega Circle, showcasing trout, indigenous fish cuisine, value-added products and live demonstrations. The fish festival witnessed active participation from officials, fish farmers, ICAR representatives and visitors from Siliguri, marking a successful debut edition of the Sikkim Fish Festival 2025. With Dilli Ram Dulal, this is Moinak Chatterjee from Akashwani News Gangtok for Parikrama.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल.
In badminton, star Indian shuttler Lakshya Sen has clinched the Australian Open 2025 men's singles title in Sydney. This marked his first title of the year. Lakshya stunned 26th-ranked Japanese Yushi Tanaka 21-15, 21-11 in the final clash today.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
We commemorate globally renowned Indian scientist Jagdish Chandra Bose, who died on 23rd of November 1937. A pioneer in plant physiology, radio technology and various other scientific fields, Bose made many significant contributions to our modern understanding of the natural world. Bose's phenomenal scientific discoveries inspired the formation of modern India, has also imbued Indians with a reaffirmed identity in the fight against British imperialism.
Bose was born on the 30th of November 1858 in Munshiganj, Bengal Presidency, now in Bangladesh, to Bhagwan Chandra Bose, a civil servant who was also active in Hindu reform movements. Bose was raised in a home committed to Indian traditions and culture. His father got Bose admitted to a vernacular school as opposed to an expensive English language school to learn his own language, Bangla, and to know and understand a wide variety of people. The impact of this early life experience and contact with a range of different people stayed with Bose throughout his life and was clear in his attitude towards his work and life.
Bose's father overruled his wish to join the Indian Civil Services and instead sent him to England to study medicine at the University of London. However, his repeated illness kept him from completing his medical studies, and he instead pursued higher studies in natural sciences and physics. After returning to India, Bose joined the Presidency College as a professor of physics. Despite racial discrimination by British administration, he made remarkable progress in his research of remote wireless signaling. However, instead of trying to gain commercial benefit from this invention, Bose made his inventions public in order to allow others to further develop his research.
Bose made a number of pioneering discoveries in plant physiology and used his own invention, the crescograph, to measure plant response to various stimuli and thereby scientifically proved parallelism between animal and plant tissues. To facilitate his research, he constructed automatic recorders capable of registering extremely slight movements. These instruments produced some striking results, such as quivering of injured plants, which Bose interpreted as power of feeling in plants. In 1917, he founded the Bose Institute, a premier research institute of India and also one of its oldest.
While praising Jagdish Chandra Bose, Rabindranath Tagore said, "From the temple of science in the west, far across the Indus, O my friend, you have brought the garland of victory. A crater on the moon has been named in Bose's honor. We salute this great Indian."
Today, we also remember a writer, journalist and cultural activist, Pyari Chand Mitra, who left us on the 23rd of November, 1883. Mitra is known for his contribution to the development of journalism and Bangla literature.
Mitra was a member of Henry D'Orozio's Young Bengal group, who played a leading role in the Bengal Renaissance with the introduction of simple Bengali prose. He was associated with various social initiatives and was a member of the Calcutta University Senate Bethune Society and the British India Association. He also worked towards development of agriculture in the country and criticized the system of permanent settlement. He also founded an organization for the translation of books on agriculture from English to Bengali.
In 1857, Mitra, along with Radhanath Sikdar, started a small magazine, Mosik Potrika, which used simple spoken Bengali prose. It was a major breakthrough in the use of Bengali, and the magazine instantly became popular. His novel, Olaleer Ghorer Dulal, written under the pseudonym Tek Chandra Thakur, used simple Bengali prose closer to the spoken speech of the day and was serialized in the magazine. So great was its popularity that the language style came to be known as Olali.
Pyari Chand Mitra continued to work for the betterment of Indian society till the very end. We salute this great son of the soil.
आज फिल्म अभिनेता और टीवी कलाकार विश्व मोहन बडोला की पुण्यतिथि है. उन्होंने फिल्म जॉली LLB 2 में अक्षय कुमार के पिता का रोल निभाया. वे थिएटर की दुनिया की भी जानी मानी हस्ती थे. उन्होंने पेशेवर पत्रकार के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत की, लेकिन बाद में कला जगत का रुख किया और दिल्ली के थिएटरों में काम करने लगे. विश्व मोहन बडोला ने अपने 5 दशक के करियर में आकाशवाणी के लिए 400 से अधिक नाटक किए. उन्होंने आशुतोष गोवारिकर की फिल्म स्वदेश समेत कई लोकप्रिय फिल्मों में भी काम किया. आइए सुनते हैं इसी फिल्म से ये गीत.
ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा.
Today, we are also remembering Roald Dahl, British writer, popular author of ingenious and irreverent children's books. His best known works, everybody knows about it, Charlie and the Chocolate Factory, very, very popular, Matilda, both of which they were adopted into popular films. That's why they are well known, even more known, I should say, and very popular. And first book, Dahl's first book, The Gremlins, it was published in 1943, was written for Walt Disney, but was largely unsuccessful. His first story collection, however, Over to You, 10 Stories of Flyers and Flying in 1946, a series of military tales, they were warmly received. It was warmly received by critics, but then again, did not sell well. He achieved bestseller status with Someone Like You, finally.
आज भारतीय सिनेमा जगत की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका गीता दत्त की जयंती है। गीता दत्त को सबसे पहले वर्ष 1946 में फिल्म भक्त प्रहलाद के लिए गाने का मौका मिला। संगीतकार एसडी बर्मन ने गीता दत्त से अपनी फिल्म दो भाई के लिए गाने की पेशकश की। वर्ष 1947 में प्रदर्शित फिल्म दो भाई गीता दत्त के सिने करियर की अहम फिल्म साबित हुई और इस फिल्म में उनका गाया ये गीत मेरा सुंदर सपना बीत गया लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ।
It's important to add here that she's blessed with a rich voice that was like an interacting instrument that at once mesmerized her listeners. Well, we can obviously hear that she had such magic in her voice that charmed her listeners.
फिल्म दो भाई में अपने गाए इस गीत की कामयाबी के बाद बतौर पार्श्व गायिका गीता दत्त अपनी पहचान बनाने में सफल हो गई और आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का गीत जाने कहां मेरा जिगर गया जी।
जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी,
किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी,
कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कहीं मारे डर के चूहा तो नहीं हो गया, कोने कोने देखा न जाने कहां खो गया, कोने कोने देखा।
Well, she rendered songs from her heart, making them so endearingly heart-rendering.
आज भारत के वीर बलिदानी सैनिक लांस नायक राम उग्रह पांडे की पुण्यतिथि है। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कैकस लिली में पूर्वी सीमा पर मोरपाडा में 23 नवंबर 1971 की रात में अपने पराक्रम से राम उग्रह पांडे ने दुश्मन के 3 बंकरों को नेस्तनाबूत कर दिया था। इससे बौखलाए पाकिस्तानी फौज ने भारी गोलाबारी की। बावजूद इसके राम उग्रह पांडे ने दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए अपना बलिदान दे दिया। राम उग्रह पांडे ने भारत पाक युद्ध 1971 में अदम्य साहस का परिचय देते हुए कई बंकरों को ध्वस्त किया था। देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देते वाले शहीद राम उग्रह पांडे को मरणोपरांत सेना के महान पदक महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। राम उग्रह पांडे के गांव में शहीद स्मारक का निर्माण भी करवाया गया है, जहां हर वर्ष शहीद के नाम पर मेले का आयोजन किया जाता है।
Well, today we are also remembering a lyricist, playwright and screenwriter who contributed to numerous Hollywood musicals and Broadway shows as well, Betty Comden. Her writing partnership with Adolph Green spanned 6 decades, the longest running creative partnership in theater history. The duo of Comden and Green collaborated most notably with composers Jules Stein and Leonard Bernstein, as well as enjoyed success with Singing in the Rain and this song as well.
To say
good night to the sun, good night to the hills, good night to the chickies and the hen.
I said good night to the cows, good night to the roosters, good night to the piggies in their pens. Good night, good night to everything that's born. And by the time I got through with saying goodnight, it was time to say
good morning to the sun, good morning to the hills, good morning to the chickies.
This was a live performance, live Broadway show.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षदा सिंह और शगुन चोपड़ा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
वी थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड।
नमस्कार।